फिर आप देखिए कि सहाबाए कराम का कुरान के पढ़ने के साथ क्या ताल्लुक़ था। मेरा ख्याल था कि इस टॉपिक को सुनकर आप सिर्फ उस पे आएंगे, लेकिन मैं आपको अभी उधर नहीं लेकर आई। हम कहते सहाबाए कराम 30 कुरान पढ़ते होंगे रमज़ान में, और एक टांग पे खड़े होकर पढ़ते होंगे, और शबीने के नाम पे पूरा कुरान पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं था। सहाबा का कुरान के साथ ताल्लुक़ आम दिनों में भी बहुत आला था, रमज़ान में उसमें शिद्दत आ जाती थी। हर सहाबी कुरान की उस आयत का हाफिज था जो उसके सामने नबी सल्लम एक दफ़ा पढ़ते थे। यानी आप कह लीजिए कि सारे ही सहाबे कराम हुफाज़े कराम भी थे। ठीक है, फिर आप देखिए कि सहाबे कराम की सुबह कुरान के साथ होती थी, लेकिन ख़ास तौर पर रातें कुरान के साथ गुजरती थी। एक शख्स को हज़रत अबू हुरैरा पर रश्क आया कि बड़ी ही अल्लाह के नबी इनकी तारीफ़ करते हैं। कर सकता है उस्ताद, किसी एक शागिर्द की तारीफ़ कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह के नबी हज़रत अबू हुरैरा की बड़ी तारीफ़ करते थे। अब बजाय इसके कि जलें कोड़ें, हसद का शिकार, रश्क का शिकार, नहीं, कहा ज़रा जाके तो देखो अबू हुरैरा करते क्या हैं। अबू हुरैरा के घर आकर कहते हैं कि मेरे दोस्त, मैंने किसी बात पर कसम खा ली है कि 3 दिन घर नहीं जाऊँगा, तो क्या मैं इन 3 दिनों के लिए आपका मेहमान बन सकता हूँ? कहा कि 3 रातें आपके साथ रहूँगा। कहा बिस्मिल्लाह। और हदीस भी है कि अपने भाई की कसम पूरी करने में मदद करो। अब वो सहाबी 3 रातें तक इनके घर में रहे, और जाकर जो कसम खाते हैं या जो बात कहते हैं, कहते हैं मैंने देखा कि अबू हुरैरा के घर की रातों का अजीब आलम है। रात का पहला हिस्सा शुरू होता है तो अबू हुरैरा ख़ुद कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तहज्जुद में कुरान पढ़ते हैं, और जब सोने का इरादा फरमाते हैं एक तहाई रात गुजरने के बाद, तो बीवी को उठा देते हैं। फिर नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड हिस्सा था उसमें अबू हुरैरा की बीवी रात को कुरान पढ़ती हैं, और जब वो सोना चाहती हैं तो घर के एक ग़ुलाम को उठा देते हैं कि आप उठिए और आप कुरान पढ़िए। क्यों? घर हो अबू हुरैरा का और रात का कोई गोशा अल्लाह के कुरान से मुनव्वर ना हो, ये गवारा नहीं है। आज कहने और सुनने वाले अपने ऊपर नज़र रखें। हो सकता है हमारी भी रात के 3 हिस्से ही हों, पहला उर्दू के लिए, दूसरा इंग्लिश के लिए, और तीसरा किसी और के लिए। अल्लाह ताला सबको बचा कर रखे, आफियत में रखे। मुसलमान घरों से ऐसी आवाज़ें नहीं आती थी, सहाबा के घरों से वो आवाज़ें नहीं आती थी जो आज खुशियों के नाम पर हमारे घरों से आती होंगी। सहाबा सादा कुरान भी बहुत पढ़ते थे, लेकिन वो कुरान उनके दिल पर नाजिल होता था। सहाबाए कराम का कुरान इतना फिल बदी था, बर मौका कुरान पढ़ते थे। याद रखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक मौके पे नबी सल्लम के दिफा में इतने ज़ख्मी कर दिए गए कि आपके बाल खींच खींच के दुश्मनों ने इस तरह कर दिया कि आपकी बेटियां कहती हैं कि हमारे बाप के बालों को पकड़ते थे तो जड़ों समेत हाथ में बाल आते थे। लेकिन जब अबू बकर खड़े होते हैं तो क्या कहते थे? अतक्तलून रजुलन ऐ यकूल रब्बी अल्लाह, सूरत मोमिन की आयत है, मर्द मोमिन के लफ्ज़ हैं। उसने भी ये जुमला बोला था कि क्या तुम सिर्फ इस बात पे एक इंसान को मार रहे हो कि वो अल्लाह को रब कहता है? अबू बकर ने यह जुमला बोला, और अबू बकर ही ने नबी सल्लम की वफात हकीकी के मौके पर सूरत आल इमरान की आयतें पढ़ दीं कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसुल आफ़ाई माता को तिलन कलब तो मलाकाबी को। मोहम्मद कुछ भी नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अल्लाह के एक रसूल थे जैसे पहले रसूल गुजरे, और अगर वो फौत हो जाएं या फौत कर दिए जाएं तो क्या तुम दीन से पलट जाओगे? अब ये आयत अबू बकर ने क्यों पढ़ी बर मौका? क्योंकि उनको आती थी, उनको ये बात पता थी। और हज़रत आयशा सिद्दीका, उनका कुरान से शगफ़ देखिए कि जब तोहमत लगती है और अब घर में बाप और माँ भी कहने लग गए कि बेटी कुछ गुनाह हो गया तो कोई बात नहीं बता दो, शौहर को भी शक है कि शायद कोई बात हो ही गई हो, और आयशा के ऊपर इतना सदमा है कि नाम तो याद नहीं आया हज़रत याकूब का, लेकिन कहती है मैंने वही कहा जो यूसुफ के बाप ने कहा था कि वह सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान, बस सब्र ही प्यारा है, अल्लाह मददगार है उस पर जो मेरे पे होता है। ये सहाबा का आलम था। आप देखिए, ये कुरान ना आता हो तो बोल सकता है बंदा? आज शायद ड्रामों के डायलॉग्स आते हों, फिल्मों के गाने आते हों, इल्ला माशाल्लाह और कुछ कोड वर्ड या कुछ एडवर्टाइजमेंट की बातें आती हों, हमें कितना कुरान आता है। क्या मैं अपने शौहर से कुरान के लफ्ज़ों में बात करती हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को कुरान के कोड वर्ड्स में सिखाती हूँ? सोचने की बात है। हज़रत अबू हुरैरा भूखे हैं, जाते नहीं थे बाहर, क्या वजह? क्या कहीं दूर जाऊँ तो इल्म से दूर रह जाऊँ और कोई हदीस अल्लाह के नबी से सुनने की बजाय किसी और से सुननी पड़े, ये नहीं गवारा। एक दिन इंतहाई भूख लगी, बाहर निकले, उधर से देखा उमर फारूक आ रहे हैं। कहा, उमर ज़रा एक आयत का मतलब तो बता दीजिए। और सूरह दहर की आयत पढ़ दी, युतिमुन ताम अला हुब्बिही, कि वो लोगों को खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में। ख्याल क्या था कि शायद खाने का जिक्र सुनकर मेरे चेहरे के पीले रंग को देखकर उमर कहेंगे, आओ खाना खा लो मेरे घर। उमर ने उसकी लंबी चौड़ी तफसीर कर दी, कहते वो तो सारी मुझे आती थी। अब बताइए कि अगर हजरत अबू हुरैरा को और उमर को इस आयत का मतलब ना आता होता तो मानते? क्या वो कह सकते, क्या आज मैं और आप कुरान सुनकर गूंगे तो नहीं हो जाते, बहरे तो नहीं हो जाते? अभी मैं अपनी बात छोड़ूं और हम चंद आयतों की तिलावत करें कुरान के किसी भी मुकाम से, हम में से कितनों को समझ आती है। एक बंदा है खाकी कमज़ोर, अब अपने ही जैसे बंदे की बात पे तो कान धरे बैठे हैं, और रब का कलाम सुने और हमें समझ ना आए, ये महरूमी है। इसके लिए वक्त लगाइए, 1-2 साल अपनी ज़िंदगी का सर्फ कीजिए इस बात पे कि आपने कुरान को सीखना है। और आज भी जो लोग हरम में जाते हैं और जब इमाम काबा की ज़ुबान से खुतबे सुनते या कुरान की आयतें सुनते हैं तो वहाँ जो दिल की कैफियत होती है वो लिख लिख के बताते हैं और बोल बोल के सुनाते हैं कि वहाँ समझ आई थी कि ये कुरान पढ़ाकर आप लोगों ने हम पर कितना एहसान किया। हकीकत यह है कि कुरान समझ नहीं आता फिर आपको और कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सहाबा का बहुत शगफ था कुरान के साथ, सादा कुरान भी पढ़ते थे फिल बदी भी पढ़ते थे। एक जंग थी, दुश्मन मुसलमानों के मुकाबले पे था। उस दौर में जंग दिन में होती थी, रात को चूँकि असबाब भी नहीं थे तो वो अपने मोर्चों में चले जाते या अपने मोर्चों में चले जाते। बाज़ दफ़ा तो रात को एक दूसरे को खाने भी पेश करते थे कि अब कल लड़ेंगे। जब मुसलमान फौजी अपने ठिकाने पे चले गए तो दूसरी फौज का एक कमांडर था, उसका नाम था कुब कुलाफ। उसके दिल में ख्याल आया कि ज़रा मैं रात के अंधेरे में इनकी एक्टिविटीज़ तो देखूँ, ये करते क्या हैं। अब ये मेरे आपके लिए बहुत ही सोचने वाला मुकाम होगा इंशाल्लाह, कि देखो ज़रा दिन तो हम सारा दिन इनको देखते ही हैं, रात को क्या करते हैं, इनके मामूलात क्या थे। फिर वो गया, उसने अपने घोड़े पर बैठकर ऐसे एक लश्कर इस्लाम का चक्कर लगाया। उसको लश्कर में से शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लगता जैसे बिस बिस नॉइस है ना, बिजी नॉइस। जब कान धरे तो वो शहद की मक्खियाँ नहीं थी, हर सहाबी तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुना रहा था। इतनी दिल पे हैबत तारी हुई, वापस गया, अपने लोगों को जमा किया, कहने लगा इनका रास्ता छोड़ दो, ये सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हाल तो ये है कि फुरसान बिन नहार। फुरसान कहते घोड़े पे बैठे हुए शख्स को, शख्स सवार। कहते दिन में ये घोड़े की पुश्त पे बैठे हुए शहजादे हैं जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालते हैं, लेकिन व रुहबान फिल लैल, रात को ये राहब बन जाते हैं। अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत इन पे तारी होती है कि ये रातों को कुरान सुनते हैं। और मेरा ये तुमको मशवरा है कि इनका रास्ता छोड़ दो। और मैं ये नहीं कहता कि हमारा मुकाबला इस गिरोह से हो और हम जीतें, मैं ये कहता हूँ कि मेरा कभी आज के बाद इनसे सामना ही ना हो। ये था सहाबा का कुरान के साथ ताल्लुक। कर क्या रहे थे सारे दिन के थके हारे, जिहाद, जिंदगी और मौत के लाले। कितनों को ऐसे में तहज्जुद याद रहती है, हम कहते लोग काम नहीं के, हम दर्स करने कराने लगते हैं, कहते हैं नमाजें अल्लाह माफ़ कर देगा, हमने दर्स नहीं कराया। पढ़े मगरिब की नमाज, हमने 20 लोगों का खाना नहीं पकाया। नहीं, सहाबा का कुरान के साथ इतना गहरा ताल्लुक था, उनको इसके साथ सुकून मिलता था। आप रही को मख्तूम में से पढ़िए, गज़वे खंदक का मौका है, इतना मुश्किल टास्क है, और इस कुरान की आयतें, कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा। तो याद रखिए, ये लगाओ एक दिन में नहीं आता। हकीकत यह है कि ये आएगा कब, जब कुरान आपकी सबसे अहम चीज़ बन जाएगा। कई सहाबा ने सिर्फ नबी सल्लम से सुनकर कुरान सीखा। और अगर आप अमल की बात कर ले, अल्लाह अकबर, एक तरफ कुरान की बात आती और एक तरफ अपनी बात होती, अपनी बात को पीछे ले आते। सबसे बड़ी मिसालें तो इसमें आपको हज़रत उमर की मिलेंगी कि जिनके बारे में इंसान कह सकता है कि सबसे सख्त सहाबा में से एक उमर थे। अपना दौरे खिलाफत है, देखते हैं कि लोग बहुत बड़े बड़े हक मेहर बांधने लग गए हैं ऐसी शो ऑफ में, और बेचारे गरीब सहाबा जो थे उनका फिर निकाह ही नहीं होता, क्योंकि जब औरतें ज़्यादा हक मेहर मांगेंगी वो कहाँ से देंगे। आपने मिंबर पे आकर एक कानून पास कर दिया और वो कर सकते थे, हुक्मरान थे। हुक्मरान को वक्ती तौर पर ऐसे अहकाम देने की इजाज़त है। कहने लगे, आज के बाद कोई 500 दिरहम से ज़्यादा हक मेहर नहीं रखेगा अपनी बीवियों का। उमर का कानून दबास हो गया। मिंबर से उतरे, मजमे में से गुजरे, एक बूढ़ी औरत ने रोक लिया, ऐ उमर, मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए, ये आपको किसने इख्तियार दिया कि अल्लाह के कानून से हटकर हुक्म दे? बाकी मैंने क्या किया? कहा, आपने कहा कि 500 दिरहम से ज़्यादा हक मेहर नहीं देना। कुरान क्या कहता है? वही नातई तहुन्ना किन्तार, कह मर्दों, अगर तुमने अपनी बीवियों को एक किन्तार, और किन्तार कहते हीप को, ढेर, बड़ा सा एक पहाड़ी छोटी सी, जैसे आप कहते ना ढेर लग जाना सोने चांदी का, कंतरा इसी से ही है। कुरान कहता है तुमने अपनी बीवियों को खजाना भी दिया हुआ है तो तलाक की सूरत में वापस नहीं ले सकते, तो आपने कैसे कह दिया कि दे ही नहीं सकते? अब उमर क्या कहते हैं? चुप, खामोश, मेरे पे बात करती हो, ले जाओ, हटो, बचो, नहीं। और या उसी के कान में कह देते, हाँ हाँ मेरी गलती हुई है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, अब मैं कह जो चुका, नहीं। वो वापस आते हैं, फिर सारा मजमा जमा होता है, फिर उमर मिंबर पे आते हैं और कहते हैं, लोगों, अभी थोड़ी देर पहले उमर ने एक कानून बनाया है, लेकिन अब मेरे तक बात पहुंच गई कि ये मेरा हुक्म कुरान से टकराता है, तो मैं यहाँ इसी ज़ुबान से हुक्म देता हूँ, जिसको जितना हक मेहर देना है वो दे। और कहते हैं दो बातें हैं, कहते हैं कि औरत जीत गई, असाबत के लफ्ज़ है हदीस में, एक औरत एक मसले को पहुंच गई और उमर भूल गया। और ख़ुद पे तुफ करते हुए कहते हैं कि उमर, बाजारों के भाव ताओ ने तुझे इल्म लेने से दूर कर दिया, भूल गए थे बस, तवज्जो नहीं दी। आज का कानून कुरान के खिलाफ बनता है कि उसके हक में बनता है? ये सहाबा की कामयाबियाँ थीं। और याद रखिए, सहाबा कराम का कुरान इतना खूबसूरत था कि एक दूसरे से सुना करते थे। अबू मूसा अलैश्शरी रदी अल्लाहु अन्हो इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि आपको लाहने दाऊदी दिया गया। जैसे हज़रत दाऊद कुरान पढ़ते थे तो साथ पहाड़ भी हिलते थे ना, अबू मूसा अलैश्शरी के कुरान पढ़ने पर भी ऐसे लोग वजद में आ जाते थे। सहाबा किराम उनके पास बैठकर फरमाइश किया करते थे कि हमें कुरान सुनाओ, शव्वितना इला रब्बिना, हमें हमारे रब का शौक दिलाओ। आज हमारी तो डिक्शनरियाँ ही बदल गई, आज हमारे बच्चे और हम और हमारी ज़ुबानों पे क्या है, ये हम सबको सोचना है। तो याद रखिएगा कि इस कुरान के साथ इज़्ज़त मिलती है, सहाबा की सारी इज़्ज़त इसमें थी। फिर आप देखिए कि सहाबे कराम सुबह फजर के बाद भी कुरान पढ़ते थे और रात तहज्जुद में भी पढ़ते थे, और घर में रोज़ जब ज़िंदगी के काम करते हुए जॉब्स पे अपने कामों पे उनकी ज़ुबानों पे कुरान होता था, ज़िंदा ताल्लुक था। अब रह गई बात आखिरी, जिस पे आज की बात पूरी करेंगे इंशाल्लाह, कि रमज़ान के साथ क्या ताल्लुक था इसका। तो पहली बात तो याद रखिए, एक जुमला लिख लें, सहाबा कराम की ज़िंदगी का मकसद ही कुरान मजीद था। इसकी तिलावत करना, इसको समझना, इस पर अमल करना और इसको नाफिज करना। और अल्लाह के नबी ये काम कर चुके थे, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बात सफ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सूरत आल इमरान की आयत 164 है। अल्लाह के नबी के चार काम इसमें बता दिए गए कि उन्होंने अपने असहाब को कुरान पढ़कर सुनाया, उसकी तालीम दी, किताब और हिकमत सिखाया और उनका तज़किया किया। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको कोई उस्ताद मिल जाए और वो इन चार तरीक़ों से उनको कुरान सिखा दें। सहाबा कराम उस मदरसे के पढ़े हुए सहाबी थे, या आप कह लीजिए कि सहाबा कराम उस मदरसे के फारिगुल तहसील स्टूडेंट्स थे कि जिसकी छत भी बारिश की सूरत में बहती थी। नाम ना लूं तो बेहतर है, आप चंद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स के नाम ले लीजिए। आज हम अपने बच्चों की कामयाबी बड़े बड़े नामों के साथ रखते हैं, फलां यूनिवर्सिटी, फलां कॉलेज, लेकिन नतीजे क्या है? सारी बात है उस मदरसे के पढ़े हुए सहाबा थे, और जो इल्म लेकर निकले उसको पूरी दुनिया पे नाफिज किया, कुरान की तिलावत को अपनी खुराक बनाया, अपनी आवाज़ों से इसको मुजयन किया। अल्लाह के नबी सहाबा को कहा करते थे कि कुरान को खूबसूरत आवाज़ से पढ़ो, और हकीकत यह है कि आप सहाबा से भी कहा करते थे कुरान पढ़ो। आपने एक सहाबी का नाम भी सुना होगा, उबै बिन काब उनका नाम है। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उबै, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे सामने कुरान पढ़ूँ। कहने लगे, अल्लाह ने मेरा नाम लिया? आपने फरमाया, हाँ अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया। ये सुनकर रोने लगे, फिर आपने उनके सामने लम यकुनिल लजीना कफरू वाली आयत पढ़ी। क्या सहाबा की खूबियाँ थी। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे एक मौके पे कहा कि मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। कहा, अल्लाह के नबी, वो तो आपके ऊपर नाजिल हुआ है, मैं क्यों पढ़कर सुनाऊँ? कहा, मुझे दूसरे की ज़ुबान से सुनना अच्छा लगता है। फिर कहते हैं, मैंने सूरत निसा शुरू की, और जब आयत 41 पे पहुँचा, फ़कैफ़ा इज़ा जीना, बस क्या होगा उस वक्त जब हम लाएंगे आपको, मिन कुल्ली उम्मतिन भी शहीदन, हर उम्मत पे गवाह बना के, व जी नबी काला हाउलाई शहीदा, और हम आपको इन सब पर गवाह बनाएंगे। तो रिक्कत तारी हो गई और आप रोने लगे, और आपने कहा कि बस बस करो। अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया कि चार लोगों से कुरान पढ़ा करो। देखिए, सहाबा को अल्लाह के नबी ने नाम भी दे दिए थे। आपने फरमाया, ये ऐसे लोग हैं जिनसे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, और इनसे पढ़ो। और वो अब्दुल्ला बिन मसूद से, सालम बिन मौला से, उबई बिन काब से, और इसी तरह मास बिन जबल से। तो सहाबा और कुरान साथ साथ था। आज हम में से कितने लोगों की फुल टाइम ज़िंदगी इस कुरान के साथ चलती है? रमज़ान में तो हम भी बहुत सारे जुज़दान धो लेते हैं और कई सिपारों को हवा लगा लेते हैं, लेकिन क्या हर वक्त हमारा कुरान है? क्या इस कुरान के साथ इतना गहरा ताल्लुक है? ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों के हाथ में कुरान दें। अभी सुबह के दर्स में भी बात थोड़ी सी हुई, अपने यंग बच्चों को कुरान पढ़ने की आदत डालिए। आज हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें मादूम हो रही हैं। चलती हैं तो किसकी? अबू बकर शात्री, इब्ने उमे मकतूम, स्वदेश, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुसलमान ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा कारियों की आवाज़ होगी, पर इसमें आपके बच्चे की आवाज़ क्या है? इसमें आपके शोहर की आवाज़ किधर है? इसमें आपकी अपनी आवाज़ किधर है? याद रखिए, आपके अपनी लाइव ज़ुबान में कुरान पढ़ने की तासीर ज़्यादा होती है। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि हम इमाम सुदेश या इमाम काबा की तरावी चलाकर पीछे तरावियां पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इस तरह तो ये और भी आराम तलबी होती जा रही है। सुने, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मानती हूँ कि अब अच्छी अच्छी तिलावत सुनने का रुझान बढ़ रहा है। पहले एक ही सीडी होती थी गाड़ियों में, कारी शाकर कासमी साहब की, वही दो दिन जफर साहब थे शायद उर्दू तर्जमे के साथ, और वो भी पंसूरा या 30वां पारा। अब तो माशाल्लाह एक एक क्लिक के ऊपर आपके पास इतने कारियों की आवाज़ें मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत है इस बात की हम खुद भी पढ़ें, अपना कुरान हम एक दूसरे को सुनाएं, अपने बच्चों का सुने। आप अपने घर को कुरान क्लब बना लें, कुरान कल्चर लाएं अपने घर में, कुरान एक्टिविटीज़, कुरान कुरान। आपके बच्चों को कुरान ऐसी खूबसूरत किताब लगने लगे कि जिसके बाद वाकई महसूस हो कि यही चीज़ है जो इनको आगे लेकर चलेगी, और जब वो समझ आता हो तो फिर आपको बहुत कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तो ज़रूरत है इस बात को लेकर चलें। सहाबा कराम रमज़ान कैसे गुजारते थे? नंबर 1, सहाबा कराम सबसे पहली बात कि रमज़ान का इंतज़ार करते थे। चंद जुमले लिख लीजिए, इसी पे बात पूरी हो जाएगी। कोई ख़ास अलग से सहाबा का रमज़ान में कोई कुरान के साथ या नेकियों के साथ ताल्लुक़ नहीं होता था। पहली बात यह कि सहाबा कराम रमज़ान का इंतज़ार करते थे। दूसरी बात है, शौक़ रखते थे। सब के दलाइल भी मेरे पास मौजूद हैं, लेना चाहें तो बाद में ले लीजिए अगर किसी बात पे शक हो तो। तीसरी बात, सहाबा कराम चांद देखने का अहतमाम करते थे। जब 29 तारीख होती थी शाबान की, तो आप घर की छतों पे चढ़कर खुले मैदानों में जाकर चांद देखने का अहतमाम करते थे। फिर चांद देखने पर दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाहुम्मा हिल्लहु अलैना बिलमनी वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। आप और मैं भी पढ़ सकते हैं, फिर अगली बात है कि सहाबा कराम सिर्फ रमज़ान का नहीं, हर चांद देखते थे, और ख़ास तौर पे रमज़ान का चांद देखकर एक दूसरे को मुबारक दिया करते थे। बस सहाबा की ये दुआ भी मिलती है कि जब अभी रमज़ान में 2-3 महीने रहते थे, जैसे आप देखिए कि रजब है या शबान का चांद दिखता, तो दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। कई लोग आज इस दुआ को हदीस कहकर पेश करते हैं, तो ये हदीस नहीं है, ये सहाबा में से कुछ सहाबा की ये दुआ हुआ करती थी। फिर उसके बाद सहाबा कराम नियत करते थे कि हमने पूरे रमज़ान के रोज़े रखने हैं। फिर अगली बात यह है कि रमज़ान का मामूल सहाबा का क्या था कि सहरी खाने का अहतमाम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि सहरी में बरकत है। लेकिन अगर कोई सहरी नहीं खा पाता था तो वो रोज़ा छोड़ता नहीं था, बल्कि उसके बाद भी रखते थे। फिर सहाबा कराम का मामूल क्या था, अपनी डे टू डे लाइफ, जिसको आप और मैं क्या कहेंगे, रूटीन लाइफ को नहीं तोड़ते थे। कैस बिन सरुमा नाम के एक सहाबी अपने खेत पे काम करके जब रात को घर आते हैं, बीवी से पूछते हैं कुछ खाने को है, कहा घर में तो नहीं है, हमसाए से पूछ के लाती हूँ। इतनी देर में वापस आई तो शोहर की आंख लग चुकी थी, वो है क्या, उस दौर के मुताबिक उनका अगला रोज़ा शुरू हो चुका था और उसके ऊपर फिर इतलाक हो गया कि अब नहीं खाएंगे। अगले दिन दोबारा खेतों में काम करने गए, भूख की शिद्दत से गिरे और बेहोश हो गए। उस पर फिर आयतें नाजिल हो गई थी कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी रफसु इला निसाइकुम वली आयत। क्या पता चला कि सहाबा अपने मामूलात नहीं बदलते थे, जो काम करते थे वो करते थे। फिर उसके बाद देखिए कि सहाबा कराम जो थे, हम तो करते हैं लोगों के रोज़े इफ्तार, सहाबा कराम रोज़े इफ्तार कराने की बजाय सहरी करते थे। मैं इतना प्यारा वाक्या सुन रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे सहाबा ने सहरी खाई थी। तो आप सहरियों का रिवाज डाल दें, जो करें सवाब के लिए करें, चाहे एक खजूर के साथ किसी की हो, लेकिन सहरी दूसरों को भी खिलाते थे। फिर अगली बात है कि सहाबा कराम जो थे तरावी के अहतमाम करते थे, लेकिन उनकी तरावी क़ियामुल लैल ही का दूसरा नाम होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी चीज़ हमें मिलती है वो तहज्जुद के नाम पर 8 रकत और 3 वितर 11 रकतें मिलती हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा की गवाहियाँ मौजूद हैं, आपके अजवाज की भी मौजूद हैं, 11 रकतों से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा। फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि रमज़ान से अलावा दिनों में आखिरी हिस्से में पढ़ते थे, लेकिन आम दिनों में फिर रमज़ान के दिनों में वो अव्वल हिस्से में पढ़ लेते थे। पूरी पूरी रात में तोड़ तोड़ कर पढ़ते थे। अल्लाह के नबी की गवाही मौजूद है कि सबसे बेहतर क़याम हज़रत दाऊद का था। रात का कुछ हिस्सा जागते, फिर इबादत करते, फिर सोते, फिर जागते, यानी सहाबा की रातें गफलत की नहीं थी। ये जो आप और मैं पूरा गिन के पूरे 30 दिन का 20 तरावी का अहतमाम करना, या एक ही जगह बैठकर 11 रकत या 8 रकत पढ़ते हैं ना, सहाबा ऐसे नहीं करते थे। सहाबा का क़ियामुल लैल मुख्तलिफ तरह का होता था। खुद अल्लाह के नबी ने 3 रातों तक तरावी पढ़ाई, उसके बाद आप बाहर नहीं आए क्योंकि फ़र्ज़ ना हो जाए। तो हमारा असल मसला पता क्या है, हम कहते हैं खूब अच्छा सवार से जाकर 1 महीने में ही बातें कर लो, फिर बाकी महीना में कोई ना पूछे या बाकी साल में कोई ना पूछे। सहाबा से हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर उसके बाद सहाबा कराम के पास थोड़ा सा भी कुछ खाने को होता था तो वो दूसरे को शेयर करते थे, खजूर तक देकर एक दूसरे के साथ उसको शेयर करवा लेते थे। फिर इसी तरह सबसे मुश्किल चीज़, जिसको मैं आपके सामने पता नहीं करूँ कि ना पेश, वो क्या आया कि सहाबा कराम ने दीन की नशर व इशात, जिसमें दावत इल्लाल्लाह, तालीम व तालुम सीखना और सिखाना, और उसका आखिरी दर्जा जिहाद, अगर किसी दुश्मन के पास जाना पड़ रहा है उसको भी नहीं छोड़ा, हिजरत नहीं छोड़ी, बड़े बड़े कारनामे रमज़ान में हुए। अब इस वक्त तारीखी वाक़यात की बात नहीं, किसी दिन वो भी सामने रख दूंगी, हर साल एक आधा लेक्चर ज़रूर इस मौजू पे होता है। आप और मैं सोचते हैं, क्या हम हिजरत करते रमज़ान में, ईद का इंतज़ार कर लेते हैं, ईद के बाद खाते पीते जाएंगे, स्नैकिंग करते हुए मक्का से मदीना जाएंगे? नहीं। क्या हम तलवारें पकड़ कर दुश्मन से लड़ते, पेटों पे पत्थर बंधे होते थे उनके, उन्होंने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे चंद लोगों को जानती हूँ कि रमज़ान का रोज़ा उनका लाइफ स्टाइल है, ऐसा नहीं कि आज है वो, बल्कि सहाबा कराम रमज़ान से, एक चीज़ जो पहले मैं नोट की उसमें वो भी ऐड कर लीजिए, कि रमज़ान के आने से पहले ही रोज़े रखने शुरू हो जाते थे। लेकिन आपने फिर उनके इस अमल को देखकर मना किया कि देखो शाबान के आखिरी दिनों में रोज़ा ना रखो, क्योंकि शक का रोज़ा कबूल नहीं होता। शौक शौक में रखते थे कि अच्छा भला कैसे होगा, जैसे आज की ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि रिहर्सल कर लेते थे। फिर इसी तरह से आप याद रखिए कि कुरान के साथ उनका शगफ और भी बढ़ता था। लेकिन एक दो बातें, लाइवलीहुड जिसको मुआशरत कहते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आता था। सहाबे अपनी बीवियों से रात को सोहबत भी करते थे, वाकयात मौजूद हैं। आपकी अजवाज कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनाबत की हालत में सुबह करते और आप उसी में सहरी करते, उसके बाद गुसल फरमाते, आपके जिस्म पर पानी के भी आसार भी होते और आप इसी हालत में मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते। और वो कहती हैं कि हम कहती हैं, यानी अपनी तरफ जो भी उन्होंने निस्बत दी, कि आप इख्तलाम से नहीं जुनाबत से गुसल में होते थे। तो इससे क्या पता चलता है, जो मुहद्दिसीन है वो अखज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी का रमज़ान की रातों में आम मामूल था। हमारा हाल क्या, नेकी के नाम पे ये भी हराम ये भी हराम ये भी गलत ये भी गलत, ऐसा नहीं करना। शादियां भी होती थी रमज़ान में, सहाबा करते भी थे करवाते भी थे। आज हमारे यहाँ मेरा ख्याल है मुहर्रम का एक महीना है जिसमें शादी नहीं होती, रमज़ान में भी लोग नहीं करते, कहते बड़ी मुश्किल बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, आपका एक ज़िंदा ताल्लुक था और आपने अल्हम्दुलिल्लाह हर नेकी की। और इस मामले में याद रखिए कि मैं और आप सहाबा से बढ़कर नेक नहीं हो सकते। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें चलते फिरते इस कुरान पे अमल करने वाले बना दे। आप अपने बच्चों को साथ लेकर चलिए, कुरान उनके हाथों में हो। सहाबा जब कुरान पढ़ते थे ना, दिलों पे रिक्कत तारी हो जाती थी। अबू बकर सिद्दीक के एक मौके पे लोगों के जुल्म और सितम से मक्का छोड़कर जाने लगे। कुछ लोगों तक बात पहुंच गई तो बड़ी यार आई, कहने लगे कितनी बुरी बात है, इतना करीम और इतना फयाज जनरस शख्स हमारी वजह से जा रहा है। एक शख्स खड़ा हो गया, कहा कि मैं अबू बकर को अपनी बना में लेता हूँ, कोई इसको कुछ नहीं कहेगा। मक्का वाला ने कहा ठीक है, एक शर्त है बस हमारी, और वो कह के अबू बकर को कहें कि हरम में आकर कुरान नहीं पढ़ेंगे। अच्छा भाई ठीक है, नहीं पढ़ते, क्या बात है? अबू बकर ने कहा चलो नहीं तो ना से मैं घर में पढ़ लूँगा। घर में आए, घर का एक कोना मस्जिद के नाम पे मुख्तस कर दिया। वहाँ सुबह शाम अबू बकर की तिलावतें थी। चंद दिन नहीं गुजरे, हम साए सारे जमा होके आ गए। कहा अबू बकर जहाँ जाकर पढ़नी है पढ़ें, यहाँ ना पढ़ें, क्योंकि आपके कुरान पढ़ने से हमारी औरतें और हमारे बच्चे मुसलमान हो रहे हैं। सच्चा कुरान दिल पे असर करता है, सीधे सीधे लफ्ज़ हैं, दिल से निकलेंगे असर करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आवाज़ में, हमारी बात में, हमारे कुरान में तासीर दे दे। और अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबी हमदी का अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह।